તારીખ 8-10-1993 શ્રીપદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 31
વૈરાગ્ય આદિ સાધન સંપન્ન છવ્વીસમું વર્ષ કૃષ્ણદાસ ભાઈ બહુ વૈરાગ્ય સંપન્ન થે, બાત કે ગ્રસ્ત થે, મુમુક્ષુ થે, બહુ વૈરાગ્ય સંપન્ન થે, અચ્છા યોગ્યતા વાલે જીવ છે. શુદ્ધ ચિત્ત સે વિદિત કી હુઈ આપકી વિજ્ઞપ્તિ પહોંચી હૈ. ગુજરાતીમાં ચિત્ત નો શું આવે? પુરસા શુદ્ધ ચિત્ત, ચિત્ત નો અર્થ અંતઃકરણ લેવો. આપણે બહુ ચર્ચા ચલી હતી મહા મંદિરજી મેં, પૂર્ણતા કા જો લક્ષ્ય હૈ શુદ્ધ અંતઃકરણ છે, ઈમાનદારી વાળી વાત નીકળી. એ શુદ્ધ ચિત્ત કો, શુદ્ધ અંતઃકરણ કો, વિદિત કી હુઈ આપકી વિજ્ઞપ્તિ પહોંચી હૈ. તો એ 8 પોસ્ટકાર્ડ લિખને કા કારણ એ બના હૈ કે લિખને વાલે ને જો વિનંતી કિયા કે મુજે કુછ એસે વિષય મેં મુજે આપસે સમજના હૈ, તો ઉસકા અંતઃકરણ દેખ કર 8 પોસ્ટકાર્ડ લિખ દિયા. એક પીછે એક પીછે વિકલ્પ ચલ ગયા, વરના તો એક પોસ્ટકાર્ડ લિખને કા વિકલ્પ આવે તો પોસ્ટકાર્ડ પૂરા કરકે દસ્તખત કર દેવે. વિકલ્પ ચલા હૈ, દૂસરા લિખા, ફિર ભી વિકલ્પ ચાલુ રહા, તીસરા લિખા, 8 પોસ્ટકાર્ડ લિખા. सब परमार्थ के साधनों में परम साधन सत्संग है. क्या लिखते हैं? आत्मकल्याण के जितने बाह्य साधन शास्त्र में लिखे गए हैं उसमें परम साधन क्या है? सत्संग. परम साधन भगवान की पूजा करना नहीं लिखा है, परम साधन रुपयों का दान देना नहीं लिखा है, परम साधन उपवास करना नहीं लिखा है. देखो क्या लिखा है, कभी ज्ञान परेशन तो उसमें पूजा भक्ति दान उपवास ये सब बहुत चलता है, किसी को परम साधन नहीं कहा है. सब परमार्थ के साधनों में परम साधन सत्संग है. और सत्संग क्या है? सदपुरुष के चरण के समीप का निवास है. सदपुरुष के चरण में जो आ गया वो सत्संग का निवास, वो सबसे बड़ा आत्मकल्याण का परम साधन है. फिर वो नहीं मिले तो अब समगुणी मुमुक्षुओं का संग करना, उसको सत्संग कहते हैं. सदपुरुष का चरण निवास मिल गया तो सबसे बढ़िया बात है, वरना संगुणी, संगुणी मैंने जिसको आत्मकल्याण करना हो ऐसे, दूसरा इरादा वाला से नहीं.
इपन सत्संग में आवे मुमुक्षु भाई आपसवा में से ये सत्संग के में.
हाँ, वो भी कैसे मुमुक्षु कि जो आत्मकल्याण के हेतु से मिलते हो वैसे, इसमें कोई दूसरी गड़बड़ हो तो नहीं.
थोड़ी व्यवहार की बात तो सही है,
नहीं नहीं करना है, सारा जिंदगी वही करते हैं. अभी वो भी इधर लाना है क्या? तो विरुद्ध रस है, वो रस विरुद्ध है, ऐसी बात है. सर्व काल में उसकी दुर्लभता है. सत्पुरुष का चरण निवास मिलना वो सर्व काल में दुर्लभ है, चौथे काल में भी दुर्लभ है, क्योंकि चौथे काल में भी जीव तो उपेक्षा ही करता है. पंचम काल में तो सत्पुरुष ही कम होते हैं या नहीं होते कभी, तो वो तो बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ है। और ऐसे विषम काल में उसकी अत्यंत दुर्लभता ज्ञानी पुरुषों ने जानी है, इस काल में तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसे नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों की जो बाह्य प्रवृत्ति है, गृहस्थी में हो, व्यवसाय में हो, कोई धार्मिक प्रवृत्ति में हो, तो प्रवृत्ति जैसी प्रवृत्ति दिखती है फिर भी वैसी नहीं है, दिखती है वैसी लेकिन वैसी नहीं है। क्या है तो किस तरह का उसमें तफावत है, अंतर है कि जैसे गर्म पानी में अग्नि का मुख्य गुण नहीं कहा जा सकता। आपने गुजराती में कह बच्चे ऊना पानी थी गाम न बड़े ठोडला पड़े उकलतू पानी हो तो कहीं गाम न बड़े एना लाकड़ू बड़े नहीं एना रू बड़े नहीं एना पेट्रोल बड़े नहीं एना गैस तेल बड़े नहीं। उल्टा नो अग्नि पर डाल दिया जाए वो गर्म पानी तो अग्नि शांत हो जाए, अग्नि नो गारो करे गर्म पानी।
उष्णता ने योग्यता रूप धर्म कही थी
जैसे गर्म पानी में अग्नि में मुख्य गुण नहीं कहा जा सकता वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है, वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है। अग्नि भी गर्म है और पानी भी गर्म है फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। अग्नि तो डालता है जलता जलाता है, अग्नि जलाता है पानी जलाएगा नहीं, ऐसी बात है। हाँ अग्नि वो तो ठीक है, हाँ ये भी बात नहीं है। हाँ तो वो बात है गर्मपना है फिर भी गर्मपना में अंतर है। जैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति दूसरे की प्रवृत्ति जैसी है लेकिन अंतर है, अज्ञानी की प्रवृत्ति कर्म बंधन करती है, वैसी प्रवृत्ति ज्ञानी की कर्म को छोड़ती है, मुक्त होते हैं वो, उसी प्रवृत्ति से वो मुक्त होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति तथापि तथापि ज्ञानी पुरुष भी किसी प्रकार से भी निवृत्ति को चाहते हैं, फिर भी ज्ञानी प्रवृत्ति को चाहते नहीं, वो भी चाहते कि मैं निवृत्ति में रह करके अपना आत्म कल्याण अपनी साधना में रहूं। पूर्व काल में आराधन किए हुए हमें अपने विषय में लिखते हैं। पूर्व काल में मैंने गत भाव में आराधन किए हुए निवृत्ति क्षेत्र, तत्काल में भी वो निवृत्ति क्षेत्र में बहुत रहे हैं, वन में रहे हैं, उपवन में रहे हैं, निवृत्ति क्षेत्र में वन उपवन योग समाधि और सत्संग आदि ज्ञानी पुरुष को आदि ज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति में रहते हुए वारंवार याद आ जाते हैं। मैंने हमको याद आ जाता है कैसा कैसा योग मिला था, कैसे जंगल में रहते थे, कैसे समाधि में रहते थे, तो आराधक पुरुष थे भूतकाल में वो। तथापि तो ज्ञानी उदय प्राप्त प्रारब्ध का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जो उदय है उसको अप्रयत्न दशा से वो अनुसरण करते हैं। कैसे अनुसरण करते हैं, अप्रयत्न दशा रहती है, ये कर लो वो कर लो ये होना ही चाहिए, इसका पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए, वो बात नहीं है, जैसा सहज उदय चले भिन्न रह करके, भिन्न रह करके मैंने अपने स्वरूप में पुरुषार्थ को जोड़ करके उदय में अप्रयत्न दशा से बरतते हैं, अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं क्या, कार्य करते प्रवृत्ति करते ऐसा नहीं लिखा, अनुसरण करते उदय को अनुसरण कर दिया। जैसे आपने बोला ऐसा करना है, ठीक ऐसा कर लेंगे, चलो ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे, चलो
ज्ञानी जी उदय भाव ने सम्यक प्रकार वेदे सम्यक प्रकार वेदे
सम्यक प्रकार में रहते हुए मैंने ज्ञाता दृष्टा रहते हुए जैसा उदय आता है उसको अनुसरण कर लेते हैं, बाह्य से अनुसरण करते हुए दिखा देखा जाता है, इतनी बात है।
सम्यक प्रकार स्वभाव
ज्ञाता दृष्टा रहे बिना राग बिना द्वेष हमें सत्संग की रुचि रहती है। लिखिए क्या लिखा, खुद लिखते हैं कि हमें भी सत्संग की रुचि रहती है, उसका लक्ष्य रहता है कब हमें सत्संग मिले, ऐसा लक्ष्य भी हमको रहता है, परंतु यहाँ नियमित रूप से वैसा अवकाश नहीं है। मुंबई से पत्र रखते हैं तो मुंबई में कोई सत्संग है नहीं, नियमित रूप से सत्संग किया जाए ऐसी परिस्थिति अभी फिलहाल मानी है। अब लिखते हैं कि कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है उनका जीव को बारंबार विचार करना योग्य है। सबसे पहले क्या करना है कि मेरे आत्म कल्याण में कौन से कारण है जो मुझे रोकते हैं, आत्मकल्याण में आने नहीं देता है, ऐसी क्या क्या बात है। इसको मुझे पहला नुकसान तो पहले बंद करे तो मुनाफा का अवकाश होता है, नुकसान चालू रहे मुनाफा हमको करना है ऐसा व्यापार कभी नहीं होता। कल्याण के प्रतिबंध रूप जो जो कारण है उनका जीव को बारंबार विचार करना योग्य है, उन कारणों का बारंबार विचार करके दूर करना योग्य है, उस कारणों को छोड़ देना है। और इस मार्ग का अनुसरण किए बिना, मैंने ऐसे किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। नुकसान ही बंद नहीं हो, जिस व्यापार से नुकसान ही बंद नहीं हो तो उस व्यापार में मुनाफा कब चालू हो सकता है, परिणाम का तो एक ही व्यापार है, या तो नुकसान करो या तो नफा करो। अब क्या क्या परिणाम में नुकसान होने में दोष क्या क्या है, मल यानी मलिनता, विक्षेप यानी आत्म कार्य करने में डिस्टर्बेंस बाधा, उसको विक्षेप कहते हैं। और अज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, अज्ञान मैंने यहां विपरीत ज्ञान उल्टा चलना समझने, ये तीन दोष हैं मल विक्षेप और अज्ञान, ये मुमुक्षु की भूमिका के श्रद्धा ज्ञान चारित्र के दोष लिए है। दर्शन मोह से परिणाम अधिक मलिन रहता है उसको मल बोल दिया, परिणाम में जो विभाव रस तीव्र होता है इसका कारण दर्शन होता है। इसका विक्षेप क्या है कि अंतराय पड़ता है, हमारे परिणाम का ही अंतराय पड़ता है, जैसे हम शांति से विचार करने लगे कई बातों पे विचार बीच में आ जाए मेंटल डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, वो विक्षेप है, उसको चारित्र में लिए तो वो है चंचलता जिसको कहते हैं, उपयोग को स्थिर होकर के विचार भी नहीं करने देते, एक ऐसा बनता है। तीसरा अज्ञान है, वो ज्ञान का विपर्यास, वो ज्ञान का दोष लिया, श्रद्धा चारित्र और ज्ञान तीनों का दोष ले लिया। ये अनादि के तीन दोष हैं, मैंने अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों बिगड़ा हुआ है, जैसे वात पित्त कफ तीनों बिगड़े तो रोग भयंकर हो जाए, ऐसा वायु का भी उपद्रव, कफ का भी उपद्रव और पित्त का भी उपद्रव, ऐसा नहीं बात हो जाए, ऐसा ज्ञानी पुरुषों के वचनों की प्राप्ति होने पर, ज्ञानी पुरुषों के वचनों मिलने पर, उनका यथा योग्य विचार होने से, वचन मिलने से उतना ही नहीं, उसका यथा योग्य विचार होने से, यानी यथा योग्य विचार मैंने क्या कि ये वचन हमारे आत्मकल्याण में हम कैसे उसको अवधारण कर सकते हैं, वचन में जो बात कही उस बात को हम हमारे आत्मकल्याण के लिए किस तरह से अंगीकार करते हैं, अवधारण कर सकते हैं, ऐसी जो विचारणा है, ऐसे दृष्टिकोण वाली जो विचारणा है कि उसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है, क्योंकि ये विचार में ज्ञान की प्रवृत्ति मुख्य है। तो अज्ञान की निवृत्ति का साधन कौन, सत्पुरुष के वचन के निमित्त से सुविचारणा, यथार्थ विचारणा, आत्महित की विचारणा कर सकें, तो ये विचारणा आगे बढ़ करके अज्ञान की निवृत्ति करके समय ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। तो बहुत संक्षेप में लाइन लिया है पूरा।
विचारणा
पीछे विकल्पात्मक विचारणा होना चाहिए, नहीं ये विकल्पात्मक है, लेकिन विकल्पात्मक विचारणा में क्या है कि आत्महित का हेतु जिसको है, हाँ, तो वो दर्शन मोह को मंद करता है और ज्ञान की निर्मलता करके सम्यक ज्ञान ज्ञान तक पहुंचाता है। वो आत्मसिद्धि में क्या लिया है, जो प्रगटे सुविचारणा तो प्रगटे निज ज्ञान, निज ज्ञान मैंने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में साधन सुविचारणा में, सुविचारणा माने क्या है कि अपना आत्महित को मुख्य रख करके सब बात का विचार करना है, जो भी शास्त्र वचन हो, जो भी सत्पुरुष के वचन हो, इस तरह से मुख्य करके विचारणा करना है, तो आगे जा करके आत्मज्ञान में परिणमित होगा। जो ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई तामे पद निर्वाण, निर्वाण पद सुधी ने लिंग बैठ ऐसा एक कड़ी। क्या कहा कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों की प्राप्ति होने पर, उनका यथा योग्य विचार होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, उस अज्ञान की संतति मैंने परंपरा बलवान होने से, अनादि से अज्ञान की परंपरा बलवान होने से उसका रोध होने के लिए, वो मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, और ज्ञानी पुरुषों के वचनों का यथा योग्य विचार होने के लिए मल और विक्षेप को दूर करना योग्य है। भावों की मलिनता में जो दर्शन मोह का प्रभाव है उसको दूर करना जरूरी है, और चित्त की चंचलता को भी दूर करना जरूरी है, वो दो बात साथ में सहयोग इसका होना चाहिए। एक अपन विचार कर सकते हैं कि जैसे कोई कहेंगे कि ज्ञानी पुरुष के वचन तो सुना लेकिन असर क्यों नहीं हुई इसके, तो ये मल होने से, जैसे दुर्गंधमय वातावरण हो तो उसमें थोड़ा कोई सेंट का स्प्रे कर दे रहे अच्छा लगा नहीं, जहाँ गंदगी बहुत पड़ी है वहाँ थोड़ा हवा में थोड़ा स्प्रे कर दे रहे एक दो मिनट तो अच्छा लगेगा, फिर वो दुर्गंध आने और लगेगा। ऐसे जिसको दर्शन मोह की मलिनता बहुत है उसको ज्ञानी का वचन मिलता है सुनता है वहाँ तो ठीक लगता है, फिर इसका जीवन में इसका कोई असर नहीं आता। क्यों? कि मल पड़ा है, मल को साफ किए बिना ज्ञानी पुरुष का जो बोध है वो परिणम नहीं सकता, उसको अवरोध रहता है। तो मल है उसको दूर करना चाहिए और चंचलता को भी दूर करना चाहिए, शांति से आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए। वो कैसे दूर होता है? अभी सरलता देखो, पहला शब्द क्या लिया, अपने तीन चार घंटा चलाया परिवेशन में सरलता का प्रकरण, बहुत बढ़िया गुण है की भूमिका में, सरलता बलवान कारण है। सरलता क्षमा, अपने दोष देखना, क्या आया दोष विचारना नहीं आया, अपने दोष को देखना। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, तो फिर हमारा आत्मकल्याण के लिए हमारा जीवन का उपयोग हमने करना है, आयु का उपयोग करना है, तो फिर वहाँ से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पूरा जीवन चला जाता है। आरंभ परिग्रह को ठीक करने में पूरे की पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, तो उसको थोड़ा मर्यादा में कर लेना। ऐसा नहीं कहते कि तुम मुनि बन के निकल जाओ, दीक्षा हो जाओ, बात नहीं, लेकिन उसका संक्षेप करना, आत्मकल्याण की मुख्यता में उसका थोड़ा संक्षेप करना। और उसको संक्षेप करने के लिए अगर हमें उनको ऐसा लगे तो अपनी आवश्यकता का भी संक्षेप कर लेना, क्या वरना क्या बात है, क्या करें, हमको तो जरूरत इतनी है, व्यापार को संक्षेप कैसा करें, आरंभ परिग्रह को संक्षेप कैसा करें, हमारी तो जरूरत उतनी है, वो बात नहीं, थोड़ा उस पर भी कंट्रोल करना है, अपना जितनी हो सके उतनी अपनी जरूरियात कम करते जाएं। जरूरियात कम करने से आमदनी कम करने में टेंशन नहीं आएगा, जरूरियात ज्यादा रही, जरूरत ज्यादा रही पर आमदनी कम करेंगे तो टेंशन आएगा, तो फिर पोसाएगा नहीं, वो बात फिर टिकने वाली नहीं है, ऐसा बन जाएगा। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह इत्यादि मल मिटने के साधन है, दर्शन मोह मिटने के इतने साधन है, सरलता क्षमा अपने दोष को देखना अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। आत्मकल्याण को मुख्य करके ऐसे परिणाम मुमुक्षु का होता है तो उसका दर्शन मोह का अनुभाग यथार्थ रूप से कम होता है, तो उनको बोध की असर होती है, यानी ज्ञान निर्मल होने लगता है। और ज्ञानी पुरुष की अत्यंत भक्ति विक्षेप मिटने का साधन है, ये बात उन्होंने बहुत अनुभवपूर्ण की है कि वैसे उपयोग की चंचलता मिटना मुमुक्षु की भूमिका में आसान नहीं है। कोई भी मुमुक्षु ऐसे ध्यान लगाने बैठ जाए और ध्यान लग जाए तो होने वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं बन सकता, क्यों, बहुत विक्षेप आएगा, क्योंकि जिंदगी में जो भी प्रसंग है, क्या क्या प्रसंग के कैसे कैसे विकल्प चल जाएगा पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए बहुत आसान साधन बनाया। आत्मा का तो दर्शन हुआ नहीं, तो जिसको आत्मा का दर्शन हुआ है ऐसा ज्ञानी पुरुष के प्रति बहुत बहुमान होने से, अत्यंत भक्ति होने से ये विक्षेप मिट जाता है। ये अपने अनुभव पूर्ण बात किया है।
भक्ति में लक्ष्य होने के कारण, भक्ति में लक्ष्य होने के कारण मार्ग के विकल्प
क्या है कि उनको वही दिखता है बार बार, उनको अत्यंत भक्ति भक्ति नहीं लिया, अत्यंत भक्ति लिया है, सामान्य भक्ति वाले की बात नहीं लिया है। जिसको अत्यंत भक्ति होती है उनका विक्षेप मिट जाता है, क्योंकि उसका चित्त एक ही जगह रह जाता है, तो बस विक्षेप हट गया उसको, इतनी मुख्यता रहा करती है उसको, तो अत्यंत भक्ति के कारण विक्षेप मिटता है। ये बहुत आसान और सुगम उपाय लिया है उन्होंने विक्षेप मिटाने का। अब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो, क्या ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो, ये वो दूसरे गांव हो, अपन दूसरे गांव हो, जैसे कलकत्ता बहुत अंतर है ये अपना गुजरात से इधर उधर, तो ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो, उस प्रसंग में बारंबार उन ज्ञानी पुरुष की दशा, चेष्टा और वचनों का निरीक्षण करना, थोड़ा थोड़ा अगर स्मरण करना और विचार करना योग्य है। प्रत्यक्ष प्रसंग का अंतराय रहता हो तो ज्ञानी पुरुष के वचनों का बार बार निरीक्षण करना, मैंने बार बार उनका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ज्ञानी पुरुष का गुणग्राम करते हुए उसका स्मरण करना, जैसे अपन नहीं कह सकते गुरु ऐसे करते थे, गुरु ऐसे करते थे, उनका स्मरण करना, उनका वचनों का विचार करना, उनका खुद का स्मरण करना और उसका विचार करना योग्य है। और उस समागम में, इस समागम के अंतराय में, प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानी रखना योग्य है। और जब सत्संग नहीं मिल रहा है ज्ञानी का, तो हम तो उदय प्रवृत्ति में लग जाए, घुस जाए पूरे के पूरे, ये बात नहीं होने। प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग नहीं मिल रहा हो तो अपनी जो उदय की जो भी प्रवृत्ति जिसको हो, उस प्रवृत्ति में बहुत सावधानी, अत्यंत सावधानी रखना योग्य है। सावधानी में क्या, अपना रस बढ़े नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों ऐसा था कि एक तो समागम का बल नहीं है, समागम में तो समागम का बल आता है, तो एक तो समागम का बल है नहीं अभी, और दूसरा अनादि अभ्यास है जिसका, ऐसा उदय है, उदय का तो अनादि अभ्यास है, ऐसा उदय है, और ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति और सहज घुस जाते हैं उदय में, उदय आए पहला तो उसकी पूर्व तैयारी चल जाती है, ये होना नहीं, ये होना नहीं, ये होना, तो बहुत सावधान रहना है। जिससे जीव आवरण प्राप्त होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सहजाकार हुई जो रस वाली प्रवृत्ति, उससे आवरण बहुत आ जाएगा, आवरण जिससे जीव को आवरण की प्राप्ति हो जाती है। उसमें क्या क्या उदय में क्या क्या बात होती है, एक तो घर का काम रहता है, परिवार का, उदय भाव में एक तो घर का, दूसरा ज्ञाति का, समाज, कोई समाज का काम अपने झुम्मे हो या आ जाता हो, ज्ञाति का, दूसरा वैसे कामों का कारण आने पर, ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर, घर का प्रसंग उपस्थित होता है, नाटिका समाज का प्रसंग उपस्थित होता है।
ये उदी कब 24 घंटा चलता है, निरंतर चलता है,
उसमें रस नहीं लेना है, ऐसा
निरंतर रस नहीं लेकर ज्यादा रस नहीं आ रहा है, इस प्रयोग की करना
है। सावधान ही रहे तो रस नहीं आएगा। मेरा मेरे आवरण का ये रस लेने से मुझे आवरण हो जाएगा, आवरण की प्राप्ति हो जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए सावधानी रहेगी तो रस कम हो जाएगा, तीव्र रस उत्पन्न ही नहीं होगा। और ये मुमुक्षु का जीवन होना चाहिए, क्या कहते हैं, मुमुक्षु का ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि तुम दीक्षा ले लो, तुम व्रत कर लो, तुम प्रतिज्ञा ले लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा ये बात नहीं किया। तुम्हारी भूमिका में तुम क्या कर सकते हो उतना करो तो आगे मोक्ष मार्ग में जाने के लिए तैयारी तुम्हारी हो सकती है, उतना करो। ऐसे कामों का कारण आने पर उदासीन भाव से कैसे करना है, सावधानी में उदासीन भाव से उन्हें प्रतिबंध रूप जानकर प्रवृत्ति करना योग्य है। प्रवृत्ति करनी पड़ेगी तुमको, कैसे करना, उदासीन भाव से रह करके। तो उदासीन में क्या कि चिकनाई नहीं होगी, वरना एक एक काम में चिकास होगी, ये ऐसा होना ऐसा नहीं होना, ये ऐसा होना ऐसा नहीं होना। उदास उपेक्षा करके उन्हें प्रतिबंध रूप जानकर उसको आत्मा को ये प्रतिबंध का कारण है, बंधन का कारण है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना योग्य है। उन कारणों को मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। अस्ति नास्ति दोनों ले लिया, प्रवृत्ति करना उदासीनता से मतलब ये गौण रहना चाहिए, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चलता ही रहता है। घर का, ज्ञाति का, दूसरा काम तो जिंदगी भर चलता ही रहता है, धंधे का, व्यापार का, व्यवसाय का, वो सब चलता ही रहता है। जिनकी मुख्य बनाकर प्रवृत्ति करेंगे तो तीव्र रस से हो ही जाएगी। तो उनको मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। साइड बिजनेस में ले जा, पूरा जीवन को एक छोटी पोटली बनाकर उसमें बांध दो, ये गौणता का पूरी पोटली है। तो पूरा गौण ही करने का एक डिवीजन है, इसको कहीं मुख्य करना नहीं, बस जितने भी उन्हें प्रसन्न हो गौण कर देना। उन कारणों को मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। और ऐसा हुए बिना, ऐसा अगर नहीं होगा तो प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त नहीं होता, फुर्सत नहीं मिलेगी। आत्मकल्याण के लिए कोई फुर्सत नहीं मिलेगी। आज घर का काम है, कल दुकान का है, परसों जाति का है, फिर घर का आया, फिर दुकान का आया, ये उनके चक्कर मुख्यतः देते रहेंगे और वहां से कोई रस लेने में निवृत्ति होगी नहीं। देवलोक का सागरोपम का आयुष पूरा हो जाता है, 6 महीना बाकी रहता है तो उसको नोटिस आती है, इधर नोटिस नहीं आती है मनुष्य को, वहां नोटिस मिल जाती है। 6 महीने पहले उसकी गले की जो माला है वो फूल है, ऐसा हो जाता है कि जैसे फूल रहा ही नहीं, मुरझा जाता है। तो उनको पता करे इतना बड़ा आयुष मेरा पूरा हो गया, इतना रस लेते हैं तो समय बीतना आसान है, समय कहाँ चला जाता है, रस आने से पता नहीं चलता है। ये रस का लक्षण है कि समय का पता नहीं चले, जैसे हम बात बात में कितनी उम्र में पहुंच गए, जीवन का उत्तरार्ध में आ गए, पूर्वार्ध पूरा होकर के 40 के जो आगे बढ़े वो सब उत्तरार्ध में आए, वो पूर्वार्ध उसका खत्म हो गया। जिसका 40 वर्ष का आयु पूरा हुआ वो उत्तरार्ध में आ गया, देर नहीं लगी, क्या लगी देर कोई इसमें। तो अवकाश ही नहीं होता है। आत्मा को अब लेते हैं, जो तत्व ज्ञान का अध्ययन करता है, शास्त्र अभ्यास करता है, और आत्मा की पहचान नहीं होती है, और बिना पहचान कल्पनाएं हो जाती है, कल्पित निश्चय होता है, उस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं।
आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पना से विचार करने में लोक संज्ञा, ओग संज्ञा और एक्सेप्शन, ये तीन कारण हैं। अब इसको थोड़ा विचार करेंगे कि हम लोग तत्व ज्ञान का जो शास्त्र है जिसमें आत्मा समझाया गया है, बताया गया है, दर्शाया है, ऐसे ग्रंथों हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की कल्पना हो जाती है। यथार्थ निर्णय या पहचान नहीं हो करके कल्पना हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि अगर लोक संज्ञा होगी तो कल्पना हो ही जाएगी। कैसे? कि हम आत्मा को जैसा कहते हैं या बताते हैं, समझते हैं, वो लोगों को बताने का अभिप्राय रहेगा और उसमें हमारी विशिष्टता लोगों की नजर में आ जाए, इसी का नाम लोक संज्ञा है।
कैसे?
आत्मा कैसा है इसके लिए हमने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, विचार भी किया, फिर भी यथार्थ आत्मस्वरूप ज्ञान में नहीं आया, कुछ कल्पना होगी। क्या कारण है? कि ये समझ करके हमने लोगों को बताना है और उसमें उस बताते हुए हमारी कोई विशिष्टता ही, जिसको हम बताते हैं, जिस लोगों को हम बताते हैं, वो लोग में हमारी विशिष्टता दिखे, मानी जाए, प्रदर्शित हो, स्थापित हो, ऐसे परिणाम लोक संज्ञा के होते हैं।
ये तो न दिखने वाला असल्य है, ये तो न दिखने वाला असल्य है, बहुत बड़ा
दिखे नहीं, लेकिन वो आत्मा को यथार्थ निश्चित तो पहुंचने नहीं देगा, कल्पना बन जाएगी। कल्पना का नाम कठोर शब्द में कहे तो गृहित मिथ्या है। क्या है
भाई?
आपस में तत्व चर्चा करें, इसमें सावधानी वो रखनी है कि कहीं हम हमारी विशिष्टता या हमारा स्थान, उसके लिए तो ये बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आज बात करता हूँ आपको, तो आप लोगों की नजर में मेरा कुछ स्थान बन जाए, अगर ऐसा कोई भीतर में रहा तो ये लोक संज्ञा होगी मेरे लिए। क्या हुआ? ये लोक संज्ञा होगी। तो यथार्थ आत्मा मेरे ज्ञान में आ नहीं सकता, कुछ न कुछ कल्पना करके मैं बोलूंगा, बताऊंगा, ये बात हो जाएगी मेरे, मुझे पता लगे नहीं लगे दूसरी बात, लेकिन हो ही जाएगी, ऐसा लेना है। सिर्फ हमारा स्वाध्याय आत्मा के विषय में अंतर खोज साथ चलना चाहिए, अंतर खोज के साथ चलना चाहिए, हमारा एक प्रयास होना चाहिए। हमारा स्वरूप कैसा है वो हमें जैसे कैसे भी यथार्थ रूप से निश्चय में लेना है, पहचान करना है, इसके लिए हम करते हैं। दूसरे के लिए वो बात कैसी होगी, वो कैसा विचार करेगा, कैसा हमारी धारणा करेगा, वो कैसा सोचेगा, असल भाई फलाना फलाना कैसा सोचेगा, वो बात नहीं देखने का है। जिसको जो सोचना है वो सोचो, हम का कार्य करें, हम समझे, वो हमारे लिए करते हैं, दूसरे के लिए ऐसी बात रहनी चाहिए, वरना चिंता बढ़ जाएगी।
ज्ञानी भी जब बात करते हैं तो अपने स्वरूप को लक्ष्य में रख कर गई,
वो तो क्या है, उनके तो प्रत्यक्ष है। ज्ञानी पुरुष को तो स्वरूप अत्यंत प्रत्यक्ष है, तो वो तो देख के बोलता है कि आत्मा ऐसा है, पर ऐसा बोलता है उसमें कोई विरोध भी करेगा? जो ना समझ होगा वो विरोध भी करेगा, कोई समझदार होगा तो अनुबंधा भी करेगा, कोई कुछ भी करो, मुझे लेना देना तो है ही नहीं। वो तो निष्प्रह होते हैं, अंतरंग से ज्ञानी तो निष्प्रह होते हैं, जिसको जैसा लगे वैसा लगो। गुरुदेव एक बोलते थे, तो देखो भैया हमारे ज्ञान में जो बात आई है हमने बोल दिया है, तुमको इधर आना है हम कभी बोलेंगे नहीं। किसी को बोला गुरुदेव ने कि तुम सोनगढ़ आना है, नहीं बोलेंगे। और सोनगढ़ आना तो बोला कि तुम इधर रुक जाना, जाना नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, इधर रुक जाओ, बहुत अच्छा व्याख्यान चलता है, नहीं बोलेंगे। हमारे ज्ञान में जो बात आई है हमने बताई है, तुम उसके खरीददार हो, ग्राहक हो, तो उसको ग्रहण करो। ग्राहक नहीं हो तो तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करेंगे। सबो का कल्याण हो, ये तो ज्ञानी पुरुष का संप्रदाय है। जगत के सर्व जीव का एक समय भी अन अवकाश रूप से सबका कल्याण हो जाए, उनकी भावना रहती है। खास करके तीर्थंकरों को तो विशेष रूप से रहती है। તો જ્ઞાનમાં જણાય છે કે સાંભળીને થાય છે, બે રીતે થાય, કાં તો આત્મા જ્ઞાનમાં આવે તો થાય, અને કાં તો એનો મહિમા આપણે સાંભળ્યો હોય તો પણ થાય, બે પ્રકારે મંદિર બને છે। એટલે કે એક તો આત્મદર્શન પૂર્વક થાય અને એક આક્રમણ પૂર્વક થાય। તો આત્મસમણ પૂર્વક થાય તો પણ સાવધાની રાખવાની છે, તો આપણે દર્શન કરવા માટેનો પ્રયત્ન સારો હોવો જોઈએ। એમાં કઈ નુકસાન નથી, સ્વરૂપ નો મહિમા કરનારો કોઈ એવો કોઈ અવગુણ નહીં હે, કોઈ નુકસાન કા કારણ ભી નહીં હે। સાવધાની ઉતની રખની હૈ કે હમે કઈ કલ્પના મેં ચડ જાના નહીં હૈ, ઉતની સાવધાની અવશ્ય રખની હૈ કે હમે કઈ કલ્પના મેં ચડ જાના નહીં હૈ।
સ્વરૂપ સંબંધી ચર્ચા કરતા પ્રોપણા કરતા સામાજિક બહુ વખાણ કરવા માટે કે અધૂરી દશામાં આપણને અભિન આવી જાય, એની સાવધાની રાખો। સાવધાની એવું
બનવાનું કુછ બોલેંગે दूसरे को अच्छा लगेगा तो वो अपना बहुमान करेगा,
तो
मान देगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, तो वो दो फिसलने की जगह है, वहां से हमें फिसलना नहीं चाहिए। वहां थोड़ा हमारी जागृति भीतर में रहनी चाहिए कि कोई कुछ भी करे, हम जो है सो है, इसमें हमें कोई जैसे कोई आदमी के पास 5-25 लाख रुपया होता है, वो उसकी समाज में प्रतिष्ठित करोड़पति की है, वो वैसे ही उनको आदर करेगा जैसे करोड़पति का आदर करे करेगा। तो वो करोड़पति अपने को समझ कर कोई 10 लाख रुपया खर्च नहीं कर देता है, क्योंकि इनके पास है ही उतना। वो तो जानता है कि मेरे पास तो 10 लाख है, वो करोड़पति मानता है, इसलिए कोई मैं करोड़पति बन जाता तो नहीं, पर करोड़पति तो 10 लाख खर्च कर सकता है, मैं करूँगा तो मैं तो साफ हो जाऊंगा। तो ऐसा कोई करता नहीं है, अंतर में अपने को बराबर समझता है, कोई कुछ भी बोलो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे जहां भी सावधानी रखने की है वहां सावधानी रखनी।
બેલ ભાઈ તો કીધું છે ને કે જ્ઞાની ને તો સાધારણ ની સાધારણી નથી, જ્ઞાની તો સાધારણ ની સાધારણી નથી,
હું તો પર્યાય માત્ર કહું ગૌણ
પર્યાય માત્ર ને ગૌણ કરી
દેવા એસા મુખ્ય કર દે। પ્રશ્ન સંખ્યા
હિન્દી છે,
મારી પાસે હિન્દી છે,
શંકા
વાલે સચ હૈ, પરંતુ હમ સચ સમજને કે અભિલાષી પોતાને 23મા વર્ષમાં લખે છે, 26મા સમય દર્શન થયું ને, લોક તો હમકો બહુ બહુમાન કરતા હૈ, લેકિન એ ભી સચ હૈ, પરંતુ હમ સચ સમજને કે અભિલાષી હૈ, કુછ લાજ શરમ માન પૂજા આદિ કે અભિલાષી હમે ક્યો નહીં, હમે માન ક્યો નહીં મિલતા, વો બાત કભી હોની ચાહીએ, ફિર ભી સચ ક્યો ના સમજ મેં આયે, સદગુરુ કી દ્રષ્ટિ સે સમજ મેં આયે, હમકો તો આપ અપને આપ સમજ મેં નહીં આતા હૈ, લેકિન સદગુરુ કી દ્રષ્ટિ સે સમજ મેં આયે, અપને સે યથાર્થ ના સમજ મેં આયે, પર સદગુરુ કા યોગ તો મિલતા નહીં હૈ, વો અપના અપના બાત લિખ રહે હૈ કે સદગુરુ કા યોગ તો હમકો મિલ નહીં રહા હૈ, પર હમકો સદગુરુ કે તોર પર માના જાતા હૈ, લોગ હમકો સદગુરુ માનને લગે હૈ, તો ફિર ક્યા કરના, ક્યા કરે, ઉલઝન મેં આગે, हम जिस विषय में शंका वाले हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ नहीं है, हम जिस विषय में शंका वाले हैं उस विषय में दूसरों को क्या समझाएं? हम खुद शंका में खड़े हैं अभी तक, 24 साल में तो आए नहीं थे, कुछ समझाया नहीं जाता और वक्त बीतता जाता है और हमारा आयु चला जा रहा है। इस कारण से तथा कुछ विशेष उदय से त्याग भी नहीं होता, अभी भी ग्रस्त अवस्था का उन्होंने त्याग नहीं किया। तो 3 साल पहले तो शादी किया है, अभी 23 साल 20 साल की उम्र में शादी किया था, जिससे सारी स्थिति शंकारूप हो गई है। इससे इसकी अपेक्षा तो हमारे लिए जहर पीकर मर जाना उत्तम है, सर्वोत्तम है, क्या करें। हमको तो ये पोसाती नहीं है परिस्थिति, लोग मान देते हैं वो हमको नहीं पोसाता। दर्शन परिसर इस तरह बेदा जाए क्या? आदर्शन परिसर भी दर्शन है क्या? आत्मदर्शन नहीं होता है, इसका दुख कितना लगा कि क्या अगर दर्शन नहीं होगा तो जहर पी के मर जाना अच्छा है, लेकिन आत्मदर्शन तो होना ही चाहिए। उतनी अकुलाहट हो गई है, ये निज परमात्मा का वियोग है। वियोग रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, उसको समय दर्शन आता है।
खुद की सावधानी का कितना स्पष्ट और सतत ज्ञान वर्तक है,
भान है,
लोग कुछ भी समझे
अपना भान
शंका में,
लोग अपना भान है उसका बराबर। और लोग अल्पकाल में पाए हैं वो, तो उस लिखावट के बाद बहुत अल्पकाल में पाए समय दर्शन। ऐसे लोक संज्ञा के कारण से आत्मा को विचार करने में कल्पना हो जाती है, ओग संज्ञा से भी विचार करने में कल्पना हो जाती है। ये विषय थोड़ा वो बहन जी का जो प्रश्न है, इसी का नाम ओग संज्ञा है। ओग संज्ञा मिटाने का प्रोसेस प्रयोगात्मक भूमिका है, और उस प्रयोगात्मक भूमिका के फल से भावभाषण आना, ये ओक संज्ञा की निवृत्ति है। तो ओक संज्ञा में रह करके अगर हम ऐसा विचार करें कि आत्मा तो ऐसा ही है, तो ज्ञानी भी कहेंगे हमें कि ज्ञानी ऐसा नहीं, ऐसा आत्मा है, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं रहोगे। उस पर तो हमने अपरिणामी का दृष्टांत दिया था कि हमारे यहाँ आत्मा को नायक नायक रूप से गुरुदेव बोलते थे और सब समझते थे। अब सोगानी जी तो प्रसिद्ध ज्ञानी तो नहीं थे उस वक्त, अप्रसिद्ध ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी तो थे, वो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध होने में से ज्ञानीपना में क्या फर्क पड़ता है, कि कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे। तो वो अपनी बात आत्मा की बात अपरिणामी शब्द से करते थे। तो जिन लोगों ने अपरिणामी सुना नहीं था और नायक सुनकर के आत्मा को समझा नहीं था, वो संज्ञा में रहे हुए थे, उन लोगों ने नहीं, ऐसा आत्मा नहीं हो सकता, ऐसा आत्मा नहीं होता है, यह परिणाम ही नहीं हो सकता। आत्मा तो जानने वाला ज्ञायक है, परिणाम बिना का कैसा हो सकता है? ये बात हो जाएगी ओक संज्ञा में निर्णय पक्का कर लेने से। निर्णय ओक संज्ञा में पक्का नहीं करके जब तक भाव भाषण न हो, तब तक जिज्ञासा में रहना अच्छा है। जैसे भगवान की वाणी में और शास्त्र वचन में वो आया, अपका सो परमात्मा, आत्मा है सो परमात्मा है, और ऐसी श्रद्धा करना, ऐसी मान्यता करने को सम्यक दर्शन कहते हैं।
तो हम हमारी आत्मा को परमात्मा मानने लग जाए, क्या इसमें आपत्ति है? हमारा आत्मा को हम परमात्मा मानते हैं, तो कहते हैं कि वो ऐसी दशा प्रकट किए बिना, इस परमात्मा दशा के दर्शन से कुछ दशा ज्ञान दशा प्रकट होती है, ऐसी दशा प्रकट हुए बिना मानने लग जाने से कोई काम नहीं चलता, इससे कोई काम बनता नहीं। कि हमने मानने लग गए आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा है परिणाम, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके पहले क्या करना? सुना हमको बराबर लगा है तो हम कैसे नहीं मानेंगे? हमने सुना हमको बराबर लगता है, विरोध नहीं आता है, सम्मत होता है, तो हम मानने लग जाएंगे कि हमारा आत्मा भी परमात्मा है। एक भूल हो जाएगी कि ओग संज्ञा में आत्मा को स्वीकार लिया, स्वीकार लिया महिमा भी करने लगे, ये सब होने हो जाएगा। लेकिन ओग संज्ञा है इसके लिए क्या विचार किया और ओग संज्ञा की निवृत्ति के लिए क्या प्रयत्न किया, ये बात यहाँ खड़ी होनी चाहिए।
भावभाषण के समय ओग संज्ञा की निवृत्ति हो जाती
है? हो नहीं सकते। कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी सुन ले, ओग संज्ञा की निवृत्ति
नहीं होती,
ऐसी बात।
मुख्य मुद्दों फिर भावभाषण का आ गया।
भावभाषण वही सम्यक दर्शन का कारण है। उसको क्या करना चाहिए ये इसका चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि उसको आत्मस्वरूप के विषय में जिज्ञासा में रहना, जहां तक जैसा कहा जैसा सुना जैसा हमने विचार से सम्मत किया वैसा ही हमारे अनुभवांश से भाषित न हो, भाषित न हो मने लगने नहीं लग जाए, वहां तक हम ओग संज्ञा में है, हमारा हमारी जिज्ञासा रहनी चाहिए। ये बात रही। विचार और लगना में क्या अंतर है? थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या कहते हैं ये और निश्चर्चा करता है अंग्रेज लेखक है फिर भी अमेरिकन डॉक्टर। देर इज डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स। थॉट्स मैंने विचार आता है और फीलिंग मैंने मुझे ऐसा लगने लगता है, मुझको विचार आया कि मेरी आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा मुझे विचार आया, विचार आ सकता। लेकिन क्या मुझे ऐसा फील होता है? ये भाव भाषण से फील होने लगता है, पर भाव भाषण नहीं होता है तो ओग संज्ञा में ऐसा विचार आ सकता है। ये विचार आता है और फील नहीं होता है वहां तक ओग संज्ञा चालू है। तो फील हो गए इसके लिए हमारी जिज्ञासा
खुली नहीं
होनी चाहिए, ये बात है। इसमें अपने तो आपको तत्वज्ञान में अभ्यास करिए मानस फॉरेनर से तो मुंडो उतरे से थॉट्स ने फीलिंग्स में मुंडो उतरे से मानस ने बहुत चर्चा करी से कितने दृष्टांत तो लीधा से एक ने एक विषय में आने थॉट कहवाय आने फीलिंग कहवाय एने दाखलाओ लीधा से दृष्टांत लीधा से ये ओग संज्ञा है। उसमें आत्मस्वरूप की कल्पना होती है, उस कल्पना को ग्रेट विख्यात शास्त्रकार बताते हैं वो कल्पना है सो
ग्रेट
विख्यात।
थोड़ा हल्का थोड़ा
हल्का
कि वो प्रयोग करवो बराबर से एना भूमिका अनुसार भूमिका के अनुकूल अलग अलग प्रयोग है, लेकिन मुख्य उसका जो प्रयोग है
जिससे भाव भाषण होता है वो भेद ज्ञान का प्रयोग है। राग और ज्ञान का भिन्न भिन्न अपने अपने रूप अनुभव होना, ऐसा एक अंतरंग प्रयोगाभ्यास को के फल से भाव भाषण आता है। भाव भाषण कैसे उत्तम होता है कि हमारे परिणाम में दो प्रकार के पर्याय निरंतर चलते हैं, एक राग वाला और एक ज्ञान वाला। ज्ञान को ज्ञान के रूप में अनुभव करे या स्वयं के रूप में अनुभव करे, और राग को राग के रूप में जाने और अपने रूप नहीं जाने, उसमें अपनत्व नहीं हुए, ऐसा एक भीतर में अनुभव का प्रयास करना उसको प्रयोग कहेंगे। प्रयोग क्यों कहेंगे कि ऐसा विचार में तो हमको आया है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, रागादि आत्मा से भिन्न है, ये भिन्न तत्व है, आश्रय तत्व है, भिन्न तत्व है या पुण्य पाप तत्व है। तो उस ऐसा विचार में आते हुए भी अनुभव में नहीं आया है, तो विचार में समझ में आया जो बात, उस थिंकिंग को, इस थॉट्स को हम अनुभव में लेने का प्रयास करें, उसी का नाम प्रयोग है। हमारी समझ को, हमारी समझ को वर्तमान परिणमन के परिणमन में लागू कर करके उसका अनुभव करने का प्रयास करें, उसी का नाम प्रयोग है। ऐसा प्रयोग चलने से भाव भाषण आ सकता है। अगर ऐसा प्रयोग नहीं चले तो किसी भी दूसरा प्रकार से ओक संज्ञा मिटेगी नहीं और भाव भाषण जाएगा नहीं, होगा नहीं, भाव भाषण होगा नहीं, ओक संज्ञा जाएगी नहीं, ऐसा बन जाएगा। राग धारा ने कर्म धारा अने ज्ञान धारा એની બંનેની જાગૃતિમાં રાગમાં હુંપણાનો અનુભવ ત્યાગવાનો છે અને જ્ઞાનમાં હુંપણાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો છે। એટલે દૂસરે શબ્દમાં કૃપાલુદેવ ઉસકો અસ્તિત્વ ગ્રહણ ભી કહેતે હૈ, અસ્તિત્વ ગ્રહણ, मैंने मैंपणा का अनुभव होना, कैसे होना, वेदन से होना। बहुत चर्चा चली वेदन की तो इन दोनों में, एक महीना तक चली है वेदन के विषय में बहुत चला है। वेदन से ग्रहण होना, ज्ञान वेदन से, ज्ञान वेदन ज्ञान सामान्य में रहता है होता है, ज्ञान वेदन से और वेदन लक्षण से ऐसा ही स्वभाव यानी स्वरूप है, ऐसा अपना अस्तित्व का अनुभवांश, वेदन खुद अनुभवांश है, महसूस होना, उसी का नाम अस्तित्व ग्रहण है, उसी का नाम भाव भाषण है।
ज्ञान सामान्य तो त्रिकाली स्वरूप क्यों ना?
नहीं, ज्ञान सामान्य त्रिकाली स्वरूप में थे यहाँ आए तो ज्ञान सामान्य छे, इस स्वभाव स्वरूप छे, पछी ये त्रिकाली के वर्तमान एवो भेद नहीं लेवो, केम के जो एने त्रिकाली लियो तो वर्तमान ज्ञान पर्याय में ये तुमने देखा से नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने उसको अनुभव स्वरूप बोला है, न आत्मा नित्य है न आत्मा अनित्य है। तो कैसा है कि जैसा है वैसा है, इसको अनुभव स्वरूप भी बोलते हैं। केवल नित्य होता तो वर्तमान ज्ञान वेदन में पाया नहीं जाता, वर्तमान ज्ञान वेदन में से वो पाया जाता है स्वभाव। तो वर्तमान ज्ञान वेदन तो अनित्य है, पर्याय रूप है, वेदन तो पर्याय रूप होती है, तो वो तो अनित्य से उसका नाश हो जाएगा अनित्यपणा में, जबकि हमारा नाश तो होता नहीं, इसलिए वो न नित्य है न अनित्य है, ऐसा
है। प्रयोग तो भाई निरंतर चलता ही रहता है। ज्ञान को न जानते हुए राग का वेदन, राग को जानो बोला आपने, मगर राग को तो वेदन करते हैं, राग का वेदन को क्या लाया जाता है? इसी तरह ज्ञान का वेदन,
ज्ञान राग का अपने रूप वेदन करते हैं, वो उल्टा प्रयोग है
जी।
प्रयोग बिना काम नहीं है, लेकिन राग को भिन्न राग रूप से अनुभव में लेना वो सुलता प्रयोग है, और अपनत्व रूप अनुभव करना वो उल्टा प्रयोग है।
मन में सत्ता भिन्न भिन्न
है, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, तो हमारी सत्ता में राग नहीं, हमारी सत्ता में राग नहीं है, ऐसा अपना अस्तित्व ग्रहण वेदन से आना चाहिए। ये बात योग संज्ञा की निवृत्ति है, उसके पहले जो कल्पना बन गई तो एक नई आपत्ति खड़ी हो जाएगी, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा।
પોતાની સત્તાનું વેદન વખતે રાગ અને સંવાદ સત્તા, પણ એ વખતે તો પછી આનંદ નું વેદન આવે ને
ત્યારે તો અનુભવ અનુભવ કે કાલ મેં આવેગા ફિર તો
અનુભવ વર્ષે પણ સુખ સજ આવે કે નહીં, અનુભવ અંશમાં પણ સુખ આવે કે નહીં?
हाँ, अंश में है सुख, तो है इसका अंश में सुख नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत उभर के आता है निर्विकल्प दशा में जो आता है, ये बहुत उभर के आता है, क्योंकि उस वक्त बुद्धि पूर्वक का विकल्प पैदा ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता, जो ऑब्स्टेकल है वो मिट गया, अवरोध मिट गया, तो एकाकार चारित्र गुण में भी वितराग दशा हुई, ज्ञान में संवेदन हुआ, और श्रद्धा ने तो पूरा आत्मा का कब्जा कर लिया, और भावभाषण में अभी श्रद्धा नहीं पलटी है, ज्ञान में अनुभवांश से वेदन अंश से अस्तित्व ग्रहण हुआ है, चारित्र में भी राग नहीं गया, श्रद्धा भी नहीं उल्टी मिट्टी नहीं, मिठा श्रद्धा मिट्टी नहीं, मंद बहुत हो जाती है, टूटने लायक मंद हो जाती है, लेकिन है मंद मिठा श्रद्धा, ज्ञान में कार्य अच्छा हुआ, स्वभाव का ग्रहण हुआ, ये बहुत बढ़िया काम है, और वहां से पुरुषार्थ की जागृति, सम्यक सम्मुख के पुरुषार्थ का एक नया फैक्टर वो पैदा हो गया, वो सबसे बढ़िया बात है, वो पुरुषार्थ वृद्धिगत होकर के स्वानुभव को ले आएगा। एक घंटा हुआ क्या चर्चा करना है, एक घंटा स्वाध्याय रखे, आधा घंटा चर्चा रखे, ज्यादा विचार करेंगे इस वचनामृत पर, और विचार करेंगे कल, और भी विचार करेंगे, ये महत्वपूर्ण पहलू है, हम लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात है ये। अवलोकन कैसे करें? हमारे परिणाम को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने की बात है, जो भी वो तो धारावाहिक चलता ही रहता है, तो कोई भी हमारा प्री कॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में क्या है, कौन सी शरत है, नो प्री कॉन्सेप्शंस, और हम उसके प्रति जो भी हमको हमारे भाव दिखने में आए हैं उसके प्रति हम न राजी हुए न हम नाराज हुए। राजी होना और नाराज होना ये हमारा जजमेंट है, तो विदाउट जजमेंट एंड विदाउट प्री कॉन्सेप्शन पढ़ा ना सो लिखता है ये शब्द का प्रयोग किया है, ओनली ऑब्जर्व करने का व्यू पॉइंट रखे, उद्देश्य व्यू पॉइंट मैंने उद्देश्य, हमारे ज्ञान में हम एक उद्देश्य को धारण करें कि हमें देखते रहना है, तो तटस्थ हो जाने से जो राग में दुख है वो दुख मालूम पड़ेगा, हमारी परिस्थिति वो है कि राग में दुख है ऐसा हम समझते हैं लेकिन हमको दुख का अनुभव नहीं होता है, तो दुख समझने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, मिठाई देखने की चीज नहीं है, खाने की चीज है, ऐसे दुख है वो समझने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, सुख दुख अनुभव की चीज होती है। और हम तो उसका परिभाषा थियोरी समझ करके अच्छा समझ लिया दुख किसको कहते हैं सुख किसको कहते हैं, वो बराबर नहीं है, वो पर्याप्त
तो अनुभव में आता है लेकिन रखना नहीं चाहते
है?
दुख तो अनुभव में आता है रखना नहीं चाहते।
हाँ
दुख तो अनुभव से रखना
नहीं चाहते, ऐसे सुख को भी अनुभव में आता है
और रखना चाहते हैं। चलो ना ना फिर अब क्या, अब क्या हमारा सिद्धांत क्या है इसमें, हमारा सिद्धांत तो टूटता है इसमें। राग मात्र दुख रूप है वो बात तो नहीं रही, किसी राग हमने सुहाता है वो सुख रूप लगा वो हम रखना चाहेंगे, जो राग हमको नहीं सुहाता है उसमें दुख लगता है वो छोड़ना चाहेंगे। तो हमारा सिद्धांत जो है वो समझ तो उसमें टूट जाती है, समझ के खिलाफ बात हो गई हमारी, नहीं बात होती ऐसा तो नहीं। ये दोनों कल्पना है, सुख की भी कल्पना है दुख की भी कल्पना है, वो ज्ञान नहीं है सुख दुख का, वो दोनों कल्पना है, दोनों कल्पना, कल्पना तो कल्पना ही है, इसका फल दुख है। एक पर्याय में वेद लगता नहीं है, समझ में आ सकता है जैसे जानता है वो ज्ञान, और पर अभिलाष करता है वो राग, ये वो चाहिए वो ठीक है वो राग है, जैसे ये लाल कलर ठीक है तो वो राग हुआ और कलर लाल है वो ज्ञान हुआ। जाना लाल है किसने जाना, ज्ञान, लेकिन वो ठीक है ऐसा किस भाव ने किया है राग ने किया वो समझ सकते हैं, लेकिन हमारा अनुभव राग में अहम रूप है, राग में अहम रूप अनुभव होने से ज्ञान चुप जाते हैं, ज्ञान को चुप जाते हैं, ये गड़बड़ है, ये विपरीत अनुभव है। क्योंकि वास्तव में हमारा अस्तित्व राग में नहीं है ज्ञान में है, राग मिट जाता है हमारा नाश नहीं होता, राग का नाश होता है हमारा नाश नहीं होता है। प्रश्न करें क्या, बाकी बात क्या थी, आखिर उनको पूछना क्या था,
अवलोकन की बात थी ना उसी में कैसे करें अवलोकन, इसमें आप जो चीज बहुत अच्छी बात की है ना, तो जीवन को दुख का तो अनुभव होता है उन्होंने किया सर।
नहीं अवलोकन में तो वो सभी परिणाम दुख रूप भाषित होना चाहिए, क्योंकि सभी राग में सभी विकल्प में दुख ही दुख है, तो अवलोकन के अभ्यास से जहां तक ऐसा नहीं भाषित हो वहां तक हमें और ध्यान से अवलोकन करने का प्रयत्न चालू रखना चाहिए।
નાનની પર્યાયની અંદરનો ભાઈ પદાર્થ જ્યારે ઝળકે છે જળાય છે ત્યારે જ્ઞાનનો પર્યાયનો પોતાનો એ રૂપે પરિણામ સ્વથી પોતાથી થાય છે, એ પરિણામ બંને સ્વરૂપી થતા એ પર્યાય પોતાએ પોતાને જાણે છે ભાઈ, એ સમયે જ્ઞાનને પકડવું હોય તો કેવી રીતે જ્ઞાન પર્યાય તરફમાં જ દ્રષ્ટિ રહી જાય છે કે પર્યાય પર્યાયને જાણે છે એ પોતાના પર પદાર્થનું પરિણામ થતું એ પોતે જ પોતાને જાણે છે, એ સમયની અંદરમાં જો પછી પર્યાયમાં રોકાઈ જવાય છે ત્યારે એ સમયમાં સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ કરીને જ્ઞાનને ક્યાં જાણવું પકડવું,
સામાન્ય સામાન્ય
જ્ઞાન સામાન્ય
સામાન્ય ઉપર જાવું हाँ, क्योंकि जो निराकार ज्ञान है वो तो ज्ञान विशेष है,
ज्ञान विशेष,
और वहीं पर ज्ञान सामान्य है,
वहीं ज्ञान सामान्य है।
हाँ, तो और वेदन ज्ञान सामान्य में है, इसलिए ज्ञान ज्ञान को जानता भी है और ज्ञान ज्ञान को वेदता भी है, वहाँ दोनों बात होती है। हम सिर्फ जानने की बात लेंगे और वेदन की बात नहीं लेंगे, जहाँ तक वहाँ तक हमारा पर्याय से हटकर स्वभाव तक आना नहीं होगा क्या। अगर हमें ज्ञान में ही रहना है, क्योंकि नहीं ज्ञान में झलकते हुए भी ज्ञान में तो कुछ आता नहीं, ज्ञान के अस्तित्व में दूसरे का अस्तित्व तो आ ही नहीं सकता है।
बराबर।
अब ज्ञान अनेकाकार हुआ, अनेकाकार होने से क्या हुआ कि अनेकाकार हुआ, और हमारी आत्मा तो अनेकाकार है नहीं,
एक रूप,
वो तो एक रूप है, तो वहाँ हमारा ज्ञान सामान्य है वो एक रूप है। अगर हम सामान्य पर आएंगे तो स्वभाव पर आएंगे, लेकिन अनेकाकार को ही देखते रहेंगे तो वो पर्याय तो मिटेगा नहीं हमारा। पर्याय से हम जो पकड़ में आए हैं वो बात छूटने वाली नहीं है,
जो एकाकार,
और उसमें क्या एक आपत्ति आती है, आपत्ति खड़ी हो जाती है नहीं चाहते हुए भी, कि जिसको सामान्य का आविर्भाव वैसे नहीं होता, पर अकेला विशेष में ही वो जो अपने को अनुभव करता है, वो ज्ञान विशेष को आविर्भूत करके ज्ञेय लुब्ध हुए बिना रहेगा नहीं। जिस ज्ञेय का प्रतिबिंब आया है उस ज्ञेय के प्रति उसका खिंचाव होगा होगा और अनिवार्य रूप से हो ही जाएगा। और ज्ञान सामान्य ऊपर अगर हम आए तो त्रिकाली जो सामान्य है उस पर आगे आएंगे आएंगे और आएंगे ही, आए बिना रहेंगे नहीं। ये स्वध्रुव और ध्रुव परध्रुव पर जाने का चैनल है दोनों। ज्ञान विशेष का आविर्भाव होने से परध्रुव पर जाने की वो चैनल खुल गई, हम चले जाएंगे फिसल करके। ज्ञान सामान्य पर आने से हम स्वध्रुव पर आ जाएंगे, वो स्वध्रुव में आने की चैनल है वो,
उसी समय स्वध्रुव,
इसलिए इस चैनल को हमें डेवलप करना है। ज्ञान सामान्य वाली जो चैनल है उसको हमें डेवलप करना चाहिए, उसको आविर्भूत को, और ज्ञान विशेष वाले को तिरुभूत करना, उस चैनल को बंद करो, तिरुभूत करना। बस ये पंद्रहवीं गाथा है हमारी, यही तो हमारी पंद्रहवीं गाथा है।
ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेष उपयोग 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 नहीं बात उपयोग करने वाली बात थी।
उपयोग में शू है कि बे अंग है उपयोग ना, नानो उपयोग के दो अंग है, उसका बहिरंग है ज्ञान विशेष जिसमें ज्ञाकार धनकते हैं।
तो एक ज्ञाकार होते ज्ञान तो ज्ञान रूप
वो तो ज्ञान रूप है, ज्ञाकार ज्ञान ज्ञान रूप है, फिर भी अगर ज्ञान सामान्य ऊपर हम नहीं आए तो जिसका आकार हुआ है जिस ज्ञ का आकार हुआ है वहां चौड़ जाएंगे,
पर्याय
बुद्धि तो हो ही जाएगी, तो पर्याय बुद्धि तो हो जाएगी, उतना ही नई बुद्धि हो जाएगी आगे जाकर के, नई निष्ठ हो जाएंगे, ज्ञान निष्ठ नहीं रह पाएंगे, ये बात बनेगी उसमें।
हो रहे हैं हर समय,
और वही हो ही रहा है, वही हो रहा है, और वही दुख का कारण है, सभी दुख का वही कारण है, सभी दोष का वही कारण है। तो इसलिए जो ज्ञान का बहिरंग है, ज्ञान विशेष रूप आकृति है, उसको गौण करके ज्ञान सामान्य है उसको आविर्भूत करना है, उसको मुख्य करना है, उसे मुख्य होने से सीधा इस पद्र में आ जाएंगे, पर्याय तो छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं, पर्याय तो फिर रहेगा नहीं, पर्याय तो मिट जाएगा, क्योंकि ये स्वभाव रूप है, ये ज्ञान सामान्य है, वो स्वभाव सदृश है, स्वभाव वहाँ है, वहाँ स्वभाव है उतना ही नहीं, उसी को तो भगवान आत्मा 17-18 में बोल दिया फिर, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा क्योंकि वेदन रूप है इसलिए अनुभूति शब्द लिया। जानने रूप नहीं लिया क्यों, कि जानने में हम उसको जानते हैं, हमारा ज्ञान को हम जानते हैं, हमारा ज्ञान को हम जानते हैं, ऐसा ले लेते हैं तो वहां वेदन वाली बात छूट जाती है, समझ में नहीं आती है कि वेदन क्या चीज है। इसलिए आचार्य महाराज ने ज्ञान ज्ञान को जानता है ऐसा नहीं लेकर के अनुभूति शब्द लिया है, इसमें महत्व है।
जो सामान्य ज्ञान को जो जो पर्याय जानती है उसी में प्रसन्न जाती है, उसी में उसमें उसको वेदन आता है
ने?
सामान्य ज्ञान जो अभी विशेष ज्ञान को छोड़ करके सामान्य ज्ञान रह जाता है उसी को पर्याय आश्रय करके उसी में प्रसन्न जाए तो उसी समय वेदन आता है। वेदन
समझ में आता
है, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष हो गया, ज्ञान विशेष को तिरूपित करके ज्ञान सामान्य को हमने ले लिया कि यही मेरा स्वरूप है, यही हूँ। उस समय जो पर्याय ये मैं हूँ ऐसा करके उसके अंदर में जो आता है उसी समय वेदन आता है।
वेदन आविर्भूत होता है
उसी समय,
उसी समय वेदन आविर्भूत होने लगता है,
पर्याय में वेदन आविर्भूत होता है। सब ध्यान ख्याल लक्ष्य तो सामान्य पर साधारण पर ही है,
सामान्य पर है और वो ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वरूप है, तो द्रव्य का भेद छूट गया वह, यहाँ द्रव्य का भेद नहीं रहेगा। हाँ जी,
जो पद्धति है उसमें खाली उपयोग बदलने का काम है।
जो वो ऐसा कहा जाता है कि उपयोग बदलने का काम है, लेकिन आविर्भूत तिरुभूत की जो परिभाषा है उसमें भाव अच्छा बैठता है, बदलने के बजाय वो अच्छा बैठता है, क्योंकि एक परिस्थिति एक्साइटिंग पोजीशन है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें गलती क्या है, विपरीतता क्या है, उसको अनुभव से समझें, अवलोकन करके अनुभव से समझें और हमारे अवलोकन को सूक्ष्म करके ज्ञान सामान्य क्या है उसको भी हमें वहां तक पहुंचने का प्रयास करें तो वेदन को ग्रहण करेंगे, वेदन से स्वभाव का सीधा पकड़ आता है। इसलिए यहां वेदन नहीं कहा, अनुभूति को आत्मा कह दिया है, पर्याय नहीं कहा, जानना नहीं कहा, आत्मा ही बोल दिया है। क्यों, कि वास्तव में आत्मा अनुभव में नहीं आता किसी को, वेदन अनुभव में आता है, ज्ञानानुभूति वही आत्मा है। इसलिए स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है, ये गुरुदेव का वचनामृत 733 नंबर का परमागम सार। स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा शब्द पड़े हैं। यही भेद ज्ञान है, यही मोक्ष की कला है, ऐसा करके फिर बहुत प्रशंसा किया। પ્રેક્ટિસ નો વિષય છે થોડો, આમ તો શું છે કે તમે પહેલી રોટલી બનાવો ત્યારે તમને મુશ્કેલ જ લાગે કે આ કેવી રીતે બને, જેમ તમે પ્રયત્ન કરો એમ બનાવતા શીખી જવાય છે, પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસનો વિષય છે। ત્યાં સુધી તમે એ પ્રેક્ટિકલમાં પ્રવેશ ન કરો ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિકલ પણ ન સમજાય અને કેવી રીતે કામ થાય છે એનું ઓરિએન્ટલ રિઝલ્ટ પણ ન સમજાય। હમારા બાર બાર એસા ભાવ રહા કે હમકો તો લાલ કલર બહુ પસંદ પડતા હૈ, इसलिए हम साड़ी भी लाल कलर की पहनते हैं, ब्लाउज भी लाल लाल कलर का, बिंदी भी लाल कलर की, और हर जगह हमारी चप्पल में भी लाल कलर होना चाहिए, हमारे उधर भी लाल कलर होना चाहिए, ऐसा एक हो जाता है। ऐसा कोई ना कोई दृष्टांत लेते हैं। अब हमारा जजमेंट हमें बदलना है कि ये लाल कलर अच्छा है, वो जजमेंट हमको बदलना है। तो उस वक्त जब हमको अच्छा लगता है तो उसमें अच्छापना क्या है इसको ऑब्जर्व करना, क्या अच्छापना इसमें हो गया। लाल तो लाल है, लाल को लाल नहीं रख करके इससे ज्यादा हम उसमें अच्छापना कैसे करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, बस उसका हमें पहले जांच करें, अपने आप को पूछें भीतर में, इसको इंटरनल कन्वर्सेशन कहते हैं। डायलॉग चलता है कि नहीं चलता है भीतर में, तो ऐसा बोलेगा तो ऐसा जवाब देगा, ऐसी बात होगी तो ऐसा जवाब देंगे, ऐसा है, चलता है कि नहीं चलता है, कैसे ये चलना चाहिए कि लाल मुझे क्यों लगता है अच्छा, लाल तो लाल है, लाल अच्छा क्यों लगता है, अच्छा लगने के क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो उसमें अच्छा अच्छा नहीं है, ऐसी क्या बात है, जब से मुझे अच्छा लगता है तो दूसरे तो सबको तो अच्छा लगता है, उसको बात तो नहीं, जब सबको अच्छा सबको नहीं लगता है तो वाकई ही अच्छा है, वो बात तो नहीं रही, मुझे लगता है वो उतनी बात रही। तो कोई कहेगा तुमको लगता होगा, हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लेना है ऐसा कलर, तुम लोग उस कलर का कपड़ा हम नहीं लेंगे, तो इसमें अच्छापन क्या और नहीं अच्छापन क्या, उसको हम न्यूट्रल बन के विदाउट जजमेंट, मैंने क्या कि न्यूट्रल पोजीशन में थोड़ा हम ट्राई करें कि हम कैसे न्यूट्रलाइज हो सकते हैं उसमें। तो ऐसे हमारी गाड़ी जिस गियर में गई है उसमें से न्यूट्रल तो करना चाहिए जब फ्री होंगे, न्यूट्रल करने से वो फ्री होगा, वरना उसकी गति रॉक की गति रोक सकते हैं।
हमने मान लिया, जैसे एक बार पहले माना था कि लाल अच्छा लगता है, मान्यता बदल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी कोई मान्यता बदलने का कोई साइंस तो होगा कि किस हिसाब से बदले।
बस एक लाल, एक लाल किस में जाना जाता है, ज्ञान में, वो नहीं है, मैं मात्र ज्ञान हूं, वो मात्र नहीं है, ठीक, मात्र नहीं मैं अच्छा क्या बुरा क्या, ये जजमेंट हमारा गलत जजमेंट है। वो मात्र नहीं होने पर भी हम उसको ठीक मानते हैं या अठीक मानते हैं, हमारा जजमेंट बराबर नहीं है।
ये विषय पांचवें इंद्रिय के विषय में लगाने
हो, सभी जगह हर उदय में लगाना है, हर परिणाम में लगाना है,
तो
उसी का नाम ऑब्जर्वेशन है, उसी का नाम अवलोकन है।
24 कलाक प्रयोगशाला चालू रख रही,
ऐसे उल्टी तो चालू ही है,
उल्टी चालू ही है,
स्थिति वाली उल्टी चालू ही है, और सुनती चालू करनी है, चालू तो चालू ही रहेगी, बंद कर सकते ही नहीं, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं, चालू करना नहीं है, वो सुनता चालू करना है, उतनी बात है।
नहीं, हम लोग जब पांच इंद्रियों के विषयों के साथ मन को जोड़ देते थे तब हमें विचार आता है, मन को जोड़ने से विचार आता है, मन की जगह ज्ञान को जोड़ देंगे तो अवलोकन आ जाएगा।
ठीक बात है,
मन को जोड़ने से ही सब काम गड़बड़ा।
मैंने मन में भी ज्ञान की तो प्रवृत्ति है, लेकिन मन को और ज्ञान को अलग कैसे छाटेंगे, कि ज्ञान में मात्र ज्ञान लेना है, जब जब वो ज्ञान हो जाता है मन नहीं रहता है, इतना फर्क है।
अभी मात्र गेम में चल रहा है, अभी मात्र गेम की महिमा आ रही है,
वो मात्र ज्ञेय है, ये मात्र ज्ञेय है, मैं मात्र ज्ञान हूँ, ये ज्ञेय के स्थान में रहना चाहिए, ज्ञान ज्ञान के स्थान में रहना चाहिए। अगर ज्ञेय अच्छा बुरा होता है तो ज्ञान ज्ञान के स्थान में नहीं रहता, उसमें मन लगता है कि ये मन में अच्छा लगा, ये मन में बुरा लगा, इसी को मन कहते हैं। वो ये उल्टा ज्ञान है, मन कहो या उल्टा ज्ञान कहो, अकेला ज्ञान कहो या सुलटा ज्ञान कहो,
मैं ऐसा हूँ इसकी महिमा ही आई नहीं है,
पहचान वगैरह आएगी कहाँ से,
ऐसा हूँ इसकी।
हमारे घर में हीरा पड़ा है, हमने जाना पत्थर, तो हमने तो बच्चों को खिलौने की तरह खेलने को दे दिया, अब कोई जोर ही आएगा, अरे ये तो अरबों का है, करोड़ों का नहीं है, इतना बड़ा हीरा मिलता नहीं जी विश्व में, जगत में कहीं नहीं, ये बच्चा खेलता है क्या करते हो, तो मुझे भी महिमा आएगी, तिजोरी में रख देंगे लेकिन पहचाना नहीं। तो जैसा दूसरा ने कहा आत्मा बहुत महिमा, परमात्मा है उसकी बहुत महिमा करना, तो करने लग गए लेकिन पहचाना नहीं, तो भीतर में से कहाँ से आएगी, बिना पहचान भीतर में से नहीं।
ગુરુદેવ કે છે ભાઈ, ગુરુદેવ કહે છે કે હું કોણ છું, કે હું ગાયક છું, કોને જાણનાર છું, જાણું છું, કોને જાણું છું, તો મારી પર્યાય ને જાણું છું, તો એ સિવાય બીજું કઈ જણાતું જ નથી, ખાલી પર્યાય સિવાય,
પર્યાય ઉદ્દેશ ઉપર આધાર છે,
હાજી
તમારા, તમે જે ઉદ્દેશ લઈને બેઠા છો એના ઉપર આધાર છે। આમ તો શું છે કે ખરેખર પોતામાં પોતા બીજું તો કોઈ છે નહીં, અમારે અસ્તિત્વ મેં દૂસરે કા અસ્તિત્વ તો હે નહીં, ફિર ભી હમ દૂસરે કો જાનતે હૈ હમારે મેં, તો વહાં ભ્રાંતિ હોતી હૈ કે હમારે મેં દૂસરા હૈ નહીં, કહાં સે જાના, એસા વો ભ્રાંતિ હોતી હૈ। તો મયૂર પાષાણ મેં મોર દિખતા હૈ, યે હો પ્રકાશ મેં બહોત અચ્છા દ્રષ્ટાંત હૈ इस विषय पर, तो मयूर पाषाण में मोर दिखता है, मयूर पाषाण में दर्पण जैसा कोई पाषाण था, उसमें बहुत पाषाण में तो पहलू होता है, दर्पण में तो एक ही सपाटी होती है, पाषाण में तो अलग अलग, तो सब पहलू में मोर दिखता था और मोर कला करके नृत्य करता था। तो मयूर पाषाण में जब मोर को नृत्य करता हुआ देखा तो पाषाण को नहीं देखा, क्या हालत हो गई, अरे कितना सुंदर मोर है, अरे कितना सुंदर मोर है, कितना अच्छा कला किया है, कैसा नृत्य करता है। तो मयूर पाषाण में मोर को देखने से पाषाण को नहीं देखा, अगर मयूर पाषाण में पाषाण को देखेंगे तो मोर नहीं दिखेगा, पाषाण ही पाषाण दिखेगा, क्योंकि मोर है नहीं वहां। तो किस उद्देश्य को धारण करके देखना, व्यू पॉइंट वो है गुरुदेव का कहने में, वो व्यू पॉइंट है, दीपचंद जी का जो व्यू पॉइंट है वही व्यू पॉइंट इस प्रतिपादन में है। क्या हम ज्ञान में अकेले ज्ञान को देखते हैं, या नई आग्नि का प्रतिबिंब आया उस नई को भी देखते हैं, अकेले ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान सामान्य दिखेगा, नहीं दिखेगा ही नहीं, तो वे अनुभव तो ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, मैंने आत्मा का अनुभव हो जाएगा, और मैं को देखेंगे तो मैं तो है नहीं, भ्रांति हो जाएगी और ज्ञान को चुक जाएंगे, तो वे का अच्छा बुरा हो जाएगा कि ऐसा है वैसा है, जैसा है उसमें तेरे में तो है नहीं,
सब्जी में नमक चखने वाला जो बात है, सब्जी में नमक चखने वाला जो बात
है, सब्जी अलग है नमक अलग है, तो दृष्टांत लिया है 15 कथा में, दृष्टांत को ही लिया है नमक वाला, तो दृष्टांत लिया है व्यंजन में, नमक अलग है व्यंजन
अलग है।